मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 5 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं केंद्रीय योजनाओं के बारे में कुछ बात करूंगा और खासकर केंद्रीय योजनाएं जो लागू की जाती हैं उसको लेकर के राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में जो थोड़ी से तनाव की स्थिति दिखाई देती है उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज आप लोगों ने दोस्तों सुनी ही होगी। अब आप एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज सुनिए। मैं सुना नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल बता रहा हूं। जिस दिन हमारा बजट आया था, ध्यान दीजिए, शनिवार को बजट आया था और उस दिन शेयर मार्केट बुरी तरह से धराशायी हुआ। अखबारों में आपने पढ़ा कि अब तक पिछले 10 सालों में कभी इतनी ज्यादा गिरावट शेयर मार्केट में नहीं आई थी, राइट? और शनिवार को शेयर मार्केट खुला था, शनिवार को शेयर मार्केट की छुट्टी होती है, लेकिन चूंकि बजट आया है और बजट का सीधा संबंध शेयर मार्केट से होता है तो शेयर मार्केट खोला गया था, राइट? अब आप देखिए कि जो बजट आया, बजट आने से जो हमारा औद्योगिक जगत है उसने महसूस किया, हमारे औद्योगिक जगत ने, कि ये जो बजट आया है ये इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है। यानी कि सरकार ने जो इसमें नीतियां घोषित की हैं, जो टैक्सेस लगाए हैं, उससे उद्योगों का भला नहीं होना है बल्कि एडवर्स इंपैक्ट होगा। यानी कि जो उद्योग है उनको नुकसान होगा। सीधी सी बात है कि उद्योगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है। आप देखिए बहुत तेजी के साथ गिरता है, राइट? और कल की खबर में आपने सुना कि शेयर मार्केट, पता लगा कि वहां जितने धड़ाम से गिरा था लगभग लगभग उतने ही उछाल से अब बढ़ गया है। तो आपके दिमाग में जरूर ये बात आ रही होगी कि यार ऐसा कैसे हुआ, जो बजट शेयर मार्केट को इतनी बुरी तरह से हिला सकता है। अब बजट तो वही है, उसमें सरकार ने अभी तक कोई तब्दीली नहीं की है, अब उसे कैसे इतना उछाल दे रही है वही नीतियां। दोस्तों ये शेयर मार्केट का बहुत ही पिक्यूलियर करेक्टर है। याद रखिए कि वैसे तो शेयर मार्केट को सामान्यतया किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, यूं कह लीजिए कि बैरोमीटर माना जाता है, थर्मामीटर माना जाता है। शेयर मार्केट बेहतर है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां की अर्थव्यवस्था के प्रति जो लोग हैं, चाहे वो देशी हों या विदेशी हों, वो आस्थावान हैं, उनको भरोसा है कि ये जो अर्थव्यवस्था है बहुत बेहतर करेगी। और अगर शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के प्रति अब उनका जो विश्वास है वो कमजोर पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए कि शेयर मार्केट केवल इसी पर आधारित नहीं होता है, दूसरे बहुत से फैक्टर उसमें काम कर रहे होते हैं। तो इस न्यूज कि इतनी एनालिसिस में केवल इस आधार पर कर रहा हूं कि आप केवल अर्थव्यवस्था को इसका आधार मत मानिएगा। यह बात अलग है कि अल्टीमेट जो है वो अर्थव्यवस्था ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था अपने आप में एक ऐसी चीज है कि पता नहीं कितनी चीजों से प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था को आप एक ऐसा पेशेंट मान सकते हैं जो वायरस के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। जरा सा पॉल्यूशन होगा तो पता लगा कि वो पेशेंट बीमार पड़ जाएगा, जरा सा कोई वायरस आया तो बीमार पड़ जाएगा, जरा सा भी कुछ गंदगी आ गई तो बीमार पड़ जाएगा। तो वो एक ऐसे कमरे में, मान लीजिए कि पेशेंट रखा हुआ है कि जहां पूरी तरह से उस कमरे को स्टरलाइज कर दिया गया है और आप चप्पल पहन करके नहीं जा सकते, पुराने पहले के कपड़े पहन करके नहीं जा सकते, आप बहुत नहा धो करके उस कमरे में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन सब चीजों के प्रति पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को जब आप इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तभी आप शेयर मार्केट को समझ सकेंगे, अदरवाइज शेयर मार्केट के चरित्र को समझना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी खबर आपने सुनी, प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक नारा सा दिया और वो ये है कि एक देश एक कर एक राशन कार्ड। देखिए यहां एक तीनों में है, एक देश एक कर एक राशन कार्ड, है ना? मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि हमारी जो सरकार है वो इस नीति पर काम कर रही है। दोस्तों अब होता क्या है कि अगर आप सिविल सर्विस के सही मायने में गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और गंभीरता के साथ साथ इत्मीनान से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस न्यूज को सुनने के बाद इस पर थोड़ा विचार करेंगे, और आपको करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि इस पर एग्जाम में कुछ पूछ लिया जा सकता है, नॉट एट ऑल, हो सकता है न पूछा जाए। कितनी चीजें पूछी जाएंगी, मैं तो इतनी बातें रोज आपको बताता हूं, इतनी घटनाओं के बारे में बताता हूं, तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या यह पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर बताने का क्या मतलब है, और अगर पूछा जाएगा तो कितने सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि रोजाना बताए जा रहे हैं तो क्या सब पूछे जाएंगे, और नहीं पूछे जाएंगे तो फिर बताया क्यों जा रहा है। देखिए, जब हम तर्क के आधार पर किसी चीज पर विचार करते हैं तो यही सब सवाल तो मन में खड़े होते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो बातें बताई जाती हैं, जो कही जाती हैं, वो इसलिए कही जाती हैं कि आपका दिमाग लगातार मजबूत होता चला जाए। आप एक भौरे से पूछिए, आप एक तितली से पूछिए कि भैया तुम किस किस का रस लेकर के आते हो, तो नहीं बता सकेगा। आप एक मधुमक्खी से पूछिए कि भैया तुमने ये जो मधुरस बनाया है, जो ये शहद बनाया है, तुम बताओ कि किस फूल का है, तो क्या बताएगी वो, बता सकेगी वो? पता नहीं लाखों फूलों पर वो बैठ करके आपके लिए थोड़ा सा शहद बनाती है। याद रखिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर होती है। आप घटनाओं को सुनते हैं, आपके दिमाग में वो चीजें दर्ज हो जाती हैं, उन पर आप विचार करते हैं, और फिर ये जो घटनाएं हैं, दर्ज हुई घटनाएं और जो आपने विचार किए हैं, वो आपके दिमाग में एक मधुकलश का निर्माण कर देती है। शहद का आपके दिमाग में एक पात्र बन जाता है, और जब सिविल सर्विस कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसी पात्र में से आप उत्तर निकाल कर दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको सोचना चाहिए इस न्यूज को सुनने के बाद, और अगर चलिए आप अपनी तरफ से उस तथ्य को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आप इस तथ्य पर विचार करें कि प्रधानमंत्री ने कहा एक देश, तो क्या इससे पहले हमारा देश एक नहीं था? नहीं था तो क्यों नहीं था, और अब है तो कैसे हो गया है, या और आगे क्या आने वाला है कि एक देश बने? एक कर, तो क्या हमारे यहां बहुत सारे कर थे, अलग अलग कर थे, तो क्यों कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि एक कर और एक राशन कार्ड? तो क्या राशन कार्ड कई कई है, उसमें क्या अंतर है, किस तरह के राशन कार्ड है, तो अब क्यों एक राशन कार्ड की बात की जा रही है? इन पर आप अपने तरफ से विचार करें। आप यूं मान लीजिए कि ये मेरी ओर से दिया गया आपको एक होमवर्क जैसा है, और याद रखिए कि जब आप विचार करेंगे तो तथ्यपूर्ण विचार होने चाहिए, आपके पास फैक्ट होने चाहिए। दोस्तों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे यूपीएससी के, उनके दिमाग में ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि दो स्टेटमेंट अभी सरकार ने दिए हैं, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं हुआ है कि ये पूरे देश में लागू होगा। इसलिए ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इन दोनों को लगभग लगभग मिला करके देखा जा रहा है, और खासकर विपक्ष जब बात करती है तो ये दोनों को एक साथ लेकर के बात करती है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। CAA को संसद ने पारित कर दिया है, वो कानून बन चुका है और संसद ने पारित किया है, तो उसकी जो संवैधानिक सैंक्टिटी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, अब आगे चलकर के क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन संसद अगर पारित कर देता है तो उसकी सैंक्टिटी तो है। अब आप कहेंगे कि भैया संसद में तो चूंकि बहुमत दल का ने की सरकार होती है तो उसको तो पारित करना ही करना है, तो जब हमारे संविधान में व्यवस्था ही ऐसी है तो उसका क्या किया जा सकता है, तो उसकी अपनी सैंक्टिटी तो है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट के लिए जो पैरामीटर हो सकता है जिसके आधार पर वो किसी भी तथ्य को देखेंगे और समझेंगे, कभी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, वो है मात्र आपका हमारा संविधान। आपके सारे निर्णय, सारी मौलिकताएं, आपके अपने विचार संविधान के दायरे में ही अगर होंगे तो मुझे लगता है कि आप उलझने से भी बच सकेंगे और जो हमारे इंटरव्यू बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा कर सकेंगे। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि सरकार ने कहा है कि जो मेक इन इंडिया है उसमें असेंबल इन इंडिया को शामिल करने की कोई बात नहीं है, यानी कि हम असेंबल ऑफ इंडिया की जगह को मेक इन इंडिया से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि मेक इन इंडिया को अब हम असेंबल इन इंडिया से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अपने आप में अलग हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात की थी तो उसमें एक पॉइंट ये बताया था कि आर्थिक सर्वेक्षण ने ये अपनी तरफ से सलाह दी है कि जो हमारा असेंबल इन इंडिया है इसको मेक इन इंडिया का पार्ट बना देना चाहिए, तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स के जो हमने एक लक्ष्य तैयार किया है 5 सालों में, आप उसके हासिल कर लेंगे। यहां सरकार ने उसे साफ साफ मना कर दिया है। अब आपको इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार के साथ क्या दिक्कत है? असेंबल इन इंडिया में भी अगर हम करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा, असेंबल हो, जब भारत में आकर के चीजें होंगी तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, सरकार को टैक्सेस भी मिलेंगे, तो सरकार उसको मेक इन इंडिया में क्यों नहीं लेकर के आ रही है, उसी में मर्ज क्यों नहीं कर रही है, जबकि हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं वो बकायदे इसके बारे में कह भी रहे कि आप ऐसा करिए, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप इस पर विचार करें कि यार ये तो बहुत ही मजेदार बात है, हम अपने लक्ष्य को भी पा लेंगे, तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं दोस्तों जानबूझकर इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा हूं, आप सब इस पर सोचिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जरा भी अगर आप अर्थशास्त्र को जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को जानते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को जानते हैं, तो इसका उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है तो मेरा सजेशन है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उस पर आपको विचार करना चाहिए कि उस जानने में कहीं ना कहीं गंभीर कमी रह गई है। तो दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और मुख्य विषय के तहत मैं आपको केंद्रीय योजनाएं जो राज्यों में लागू नहीं की जा रही है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। और खासकर मैंने इस विषय को इसलिए चुना है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि बहुत से जो राज्य हैं वो केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है, और भी जो दूसरी चीजें हैं, जैसे अभी दिल्ली के चुनाव में जो प्रधानमंत्री घर योजना है वो लागू नहीं की गई, और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, कुछ आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं कर रहे हैं, तो कुछ के यहां अभी आप यूं कह लीजिए ग्रामीण रोजगार गारंटी से भी अपने को अलग कर लिया है, कुछ हेल्थ के जो दूसरी योजना है उनको लागू नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको केवल कुछ बिंदु उपलब्ध करा रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वे केंद्र से टकराव चाहते हैं, क्या केंद्र के साथ उनकी पट नहीं रही है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई भी केंद्रीय योजना इस तरीके से राज्यों में लागू होती है तो पहली बात कि कुछ योजनाओं को अगर हम अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है धन का, तो उसमें यह होता है कि कुछ धन केंद्र देगी और शेष धन राज्य देंगे। अब जैसे स्मार्ट सिटी, अब उसमें देखिए कि 50% मान लीजिए कि केंद्र दे रही है, 50% राज्यों को अपनी तरफ से लगाना है। अब राज्य जो 50% लगाएंगे उसमें फिर यह है कि राज्य इतना लगाएंगे और जो हमारी स्थानीय निकाय हैं जैसे म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपैलिटी है, नगर निगम, ये सब इतना पैसा देंगी तो वहां स्मार्ट सिटी बनेगी। तो इसी तरह से जो दूसरी योजना है उनमें भी इस तरह का आपको विभाजन देखने को मिलेगा। पहली बात, हो सकता है कि राज्यों के पास उसके लिए अब उतना पैसा न हो। दूसरी बात, जब राज्य केंद्रों की योजनाओं को लागू करते हैं तो सीधी सी बात है कि उनकी अपनी योजनाएं भी होती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमारी जो अपनी योजना है वो हमारी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, हमने उसे अपने ढंग से बनाया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्यों का निर्माण अलग अलग आप देख रहे हैं वो तो यही है ना कि भाई वो स्थानीय जरूरतों को समझते हैं और फिर जो नीतियां बनाते हैं वो स्थानीय जरूरतों के अनुकूल होती हैं, लेकिन केंद्र की जो नीतियां होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर की होती है, तो वहां भी उनको लगता है कि नहीं, हमारी अपनी नीति बहुत महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि केंद्रीय नीति की, तो हम जो पैसा केंद्रीय नीतियों को लागू करने में लगाएंगे, केंद्रीय योजनाओं को कह लीजिए, तो हम अपनी ही योजना को लागू करें तो वो फिर केंद्र की योजना को लेकर के नहीं चलते। फिर उनको यह भी लगता है कि ठीक है, केंद्र की योजना मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो एक राज्य है मान लीजिए कि केरल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केरल लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको इस रूप में बिल्कुल मत लीजिएगा, मान लीजिए कि केरल रहा है, तो केरल को लगता है कि हमारे यहाँ के लोगों को आवास की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ज्यादातर लोगों के पास अपने आवास हैं और जिनके पास थोड़े बहुत नहीं है तो उन्हें हम अपने ढंग से दे सकते हैं, तो हम जो धन प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाएंगे या दूसरी योजनाओं में लगाएंगे, मैं केवल एक उदाहरण के तौर पर इसे कह रहा हूं, है ना, आप इसे मत ले लीजिएगा कि पूर्व केंद्र और राज्य धन देते हैं या कितना कितना देते हैं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल केवल समझाने के लिए एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं। तो उनको लगता है कि हम वो पैसा आवास योजना में क्यों लगाएं, हम दूसरी योजनाओं में लगाएं, तो वो अपने यहां उस योजना को लागू नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बहुत से राज्यों ने लागू नहीं किया हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहां के लोगों के पास रोजगार है, हमारे यहां दूसरे काम हैं, तो हम इसको क्यों लागू करें। फिर होता यह है कि जब आप केंद्रीय योजना को लागू करेंगे, देखिए तो आपके पास जो लोग हैं काम करने वाले सरकारी तंत्र में वो तो उतने ही लोग हैं, और वे लोग हैं जो आपके अपने हिसाब से हैं। अब उसमें जब केंद्र की योजनाओं में वो अपने स्टाफ को उधर भेज देते हैं तो इधर जो अपनी योजनाएं हैं वो गड़बड़ होने लगती हैं, इनमें जो मैन पावर है उनकी कमी पड़ने लगती है, तो उन्हें लगता है कि हम इसकी कीमत पर केंद्र की योजनाओं को लागू क्यों करें। और फिर राजनीति तो देखी होती ही है, अगर दूसरी पार्टी की सरकार राज्यों में है तो वो केंद्र की योजनाओं को उतना महत्व नहीं देंगी। फिर राज्यों को ये भी लगता है कि हम केंद्रीय योजनाओं को लागू करेंगे तो केंद्र के प्रति लोगों के मन में होगा कि भैया विकास का जो माध्यम है वो तो केंद्र है, हमारा राज्य तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो केंद्रीय सरकार को वहां जो पार्टी है उसे ज्यादा महत्व देंगे। तो नो डाउट कि राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले में सोचा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ तथ्य आपको दिए हैं जिसके आधार पर आप एक सही निष्कर्ष निकाल सकें कि भाई ऐसा क्या होता है कि केंद्र सरकार कहती है कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हम अपनी यहां ये योजना लागू कीजिए। और ये योजनाएं होती भी हैं, कुछ किसानों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए होते हैं, तो लगता है कि ये तो बहुत अच्छी योजना है तो राज्यों को लागू करना चाहिए, तो वो क्यों लागू नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स आपको उपलब्ध कराए हैं। तो दोस्तों, आज के इस मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।